السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، لب کو لب، سب کا جواب
آفٹر السلام علیکم. After the hum and the greeting of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Shaykh said that he said, respected elders and brothers,
Allah tabarak wa ta'ala ne daawat ke saath jo hame nisbat ata farmayi hai wo Allah paak ke inaamat mein bahut bada inaam hai.
The association that Allah has given us with the work of Dawah is a big, big blessing from Allah subhanahu wa ta'ala.
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کو، دین کی محنت کو سبق بنایا ہے دین کے زندگیوں میں آنے کا.
Because Allah سبحانہ و تعالیٰ has made the effort of دعوت an avenue for the deen to come in the lives of the people.
اور دین جو ہے وہ انسانوں کی کامیابی کا ضامن ہے.
And the deen is the guarantee for the success of the human beings.
جس انسان کی زندگی میں دین ہوگا وہ انسان کامیاب ہوگا.
The one in whose life there is deen, he will be successful.
اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا.
The one who has no deen in his life will fail.
اور جس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا اتنا وہ کامیاب ہوگا.
And whatever amount of deen a person has in his life, in that proportion he will be successful.
اگر پورا دین اس کی زندگی میں ہے تو اس کو پوری کامیابی ملے گی.
If the full deen, complete deen is in his life, he will get the full success.
پوری کامیابی کا مطلب ہوتا ہے کہ دخول اولی، اول وہلے میں بغیر کسی مواخذے اور پکڑ کے اللہ کی رحمت میں داخل ہونا.
The complete success means in the very first round without any problems he will enter into the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala.
کیونکہ جب آدمی کا دین کامل ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے سے اس کو بشارت دے دی جاتی ہے.
Because when a person is complete in his deen before he dies the good news is given to him.
يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. فرشتے اترتے ہیں موت سے پہلے اور خوشخبری دیتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، حزن نہ کرو.
The angels descend before the death and they give the dying person glad tidings, don't fear and have no stress of any kind.
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. اور خوش ہو جاؤ اور خوشخبری لے لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا.
And hear the good news about that jannat which you have been promised.
تو جو صفت اللہ پاک نے اولیاء اللہ کی بیان فرمائی وہ صفت دین والے کو موت کے وقت میں بتائی جاتی ہے.
The quality that Allah subhanahu wa ta'ala described for those who are friends of Allah, that quality at the time of death Allah will show him.
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
Listen attentively, those who are friends of Allah at the time of their death, they have no fear or stress of any kind.
تو دین جب کامل ہوتا ہے جس نے اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر استقامت کی تو اس کو یہی خوشخبری دی جاتی ہے لا تخافوا ولا تحزنوا.
When the deen is complete in the life of a person who believe in Allah and trust and steadfastly remain obedient to Allah, then Allah gives this good news to that person.
اور ایسا آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کی قبر کو کشادہ کیا جاتا ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا جاتا ہے، اس کی قبر میں نور کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو روشن کر کے اس کو اتنا وسیع کیا جاتا ہے جو اس کے حد نظر تک ہو.
And such a successful person when he enters his grave he is welcomed and the qabr is made a garden from the garden of the paradise and he there is light in the qabr and it is opened up as far as his eyesight can see.
علماء نے فرمایا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو مرتے ہی اس کی زندگی کی جگہ جو ہے وہ اس پوری دنیا کی اتنی ہو جاتی ہے.
When a person dies, as soon as he dies, the place, the person of Iman, when he dies, the place that he has, it becomes equal to the world that he left behind. Because his sight reaches up to the end of the horizon.
سیدھی طرف بھی آسمان تک, بائیں طرف بھی آسمان تک, سامنے بھی آسمان تک, اوپر بھی آسمان تک.
It reaches on each side about as far as there is something to see.
اسی لیے جب جنتی جنت میں جائے گا تو ادنا درجے کے جنتی کو دس گنا دنیا ملے گی.
That's why the person in paradise, when he goes to the Jannah, the least one that a person of paradise dweller will get will be 10 times equal to the world that he left behind.
حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو مرتے ہی اس کی جو جگہ ہو جاتی ہے وہ اس دنیا کی اتنی ہو جاتی ہے.
So Qari Tayyib Sahib, he quotes as written that when a person dies, as soon as he sees the very first place that he sees, it becomes equal to the total space of the world that he left.
مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے, جو دنیا ہے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں, وہ اس دنیا سے بہت زیادہ بڑی ہے.
And the waiting time place, which we call barzakh, it's much bigger than this dunya.
یعنی ایک آدمی کو اس دنیا کی اتنی مل جاتی ہے, آپ اندازہ فرمائیں کتنی بڑی ہوگی.
Then he said just for your imagination purpose, one person gets that space equal to the whole world that he left.
اللہ تعالیٰ شانہو کا یہ انعام ہے بندوں کے ساتھ.
It's a special gift of Allah to his servant.
اس لیے اصل کامیابی تو وہ ہوتی ہے جب آدمی اس دنیا میں کامیاب ہو کے جاتا ہے, اس کے بعد سے جو وقت شروع ہوتا ہے وہ کامیابی کا شمار ہوتا ہے.
So the real success is the one is for that person who sees it when he leaves this world and goes, and that's when he sees, that is the real success.
جب آدمی قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہاں شروع سے ہی اس کو کامیابی مل جائے گی.
When a person is raised from his grave, from the beginning he will see the success.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اول وہلے میں مل جائے گی.
In the very first round he will receive the intercession, the shafaat of Rasulullah.
عرش کا سایہ اس کو جلدی مل جائے گا.
He will gain the place under the shadow of the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala.
جو مقامات حشر ہیں, حشر کے جو مقامات ہیں وہ 50 ہیں, وہ 50 مرحلوں سے نکال کے اس کو جنت عرش کے نیچے پہنچا دیا جاتا ہے.
So there are 50 checkpoints on the day of Qiyamah and the Hashr. Of all those 50 points, checkpoints he will pass, he'll be brought under the arsh of Allah.
Sari رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے, 50,000 سال میں سے ہر ہزار سال کا ایک موقف ہوتا ہے, ایک جگہ ہے ایک ہزار سال کے اوپر.
He quotes Ali رضی اللہ تعالیٰ saying that that day 50,000 years long day of the day of Qiyamah is such that for every 1,000 years there is a stop which we have to maneuver.
ایسے 50 موقف ہیں.
There are such 50 stopovers.
اس لیے وہ دن 50,000 سال کا ہوتا ہے.
So it's a 50,000 years long one day.
تو اس دن میں پہلے ہی مرحلے میں آدمی کو عرش کا سایہ مل جاتا ہے.
The successful person in the very first stopover will get the shadow under the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala.
اور مواقع جتنے بھی پیش آئیں گے ان تمام گھاٹیوں سے وہ نکل جاتا ہے.
And he will be made to pass quickly over all the rest of the stopovers to arrive there.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کے لیے کھانے کا اور پینے کا اور پہننے کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala has already prepared for him there his food and his drink and his dress.
اور جب وہاں سے اس کو نکالا جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے.
And when he is in transition from here, then he will be entered by Allah into a permanent paradise.
تو شروع ہی سے پکڑ نہ ہو, اس کو کہتے ہیں پوری کامیابی.
So to not run into any problem from the very beginning, this is called the total success.
اور اگر شروع میں تھوڑی بہت پکڑ ہو گئی, اس کے بعد دول ڈپے کے بعد میں پھر بخشا گیا, تو وہ دخول اول ہی نہیں ہوا, وہ پہلے ہی مرحلے میں کامیابی نہیں ملی, پہلے خوب پیٹ بھر جوتے کھائے پھر گئے اس کے بعد جنت میں.
But if the person did not succeed from the very beginning, even if he gets little punishment and he gets beat up, then this is after being beat up, if he is going somewhere, this is not called total success for the success from the very first round.
اور وہاں کا ٹائم چونکہ بہت لمبا ہے, اس لیے چھوٹی چیز کے لیے بھی زیادہ وقت لگنے والا ہے.
And because the day is so long, Even for a small punishment, it's going to take long time.
एक नमाज के लिए एक हकब आदमी जन्नत में जाने से रुक सकता है, एक नमाज में सुस्ती हो जाने पर.
For quitting one salat, a person will have to wait one hakab.
और हकब 80 साल का होता है.
And hakab is 80 years.
तो एक एज दुनिया की कम से कम अगर आखिरत का साल मुराद न भी लें, हालांकि वही मुराद लेते हैं मुअज्जिन, अगर न लें तो एक एज पूरी सिर्फ एक नमाज के बदले में जन्नत में जाने में देर हो जाएगी.
सो ऑल्दो द स्कॉलर्स डू नॉट असाइन वन ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन दीज नंबर्स बट जस्ट वन 80 ईयर इज इक्वल टू द होल लाइफ टाइम ऑफ मेनी पीपल और जस्ट फॉर वन सलात
इतनी देर हो जाएगी बख्शे जाने में.
And that much time will take before a person is forgiven by Allah.
और ये तो सिर्फ नमाजों का ही मामला है.
And this is just about the salat.
रोजे भी हैं, zakat भी है, हज भी है.
Then there is fasting, and then there is zakat, and then there is hajj.
हकूक भी हैं, rights भी हैं.
And then there are rights.
मामलात हैं, मुआशरत है, अखलाक है.
Then there is our interpersonal relationship. It is how we live socially. What are our akhlaq, manners like?
तो इन सब चीजों के एतबार से जितना दीन हमारा नाकिस होगा उतनी देर हो जाएगी जन्नत में जाने में.
सो इन ऑल दिस डिपार्टमेंट्स द वीकर आवर दीन इज द मोर डिले देयर विल बी इन एंट्री इनटू द जन्नत.
इसलिए जब अल्लाह पाक ने हमें अपने कर्म से मुसलमान बनाया है और ईमान वाला बनाया है तो अपने ईमान को पूरा करना है और अपने इस्लाम को पूरा करना है ताकि भरपूर फायदा उठाया जा सके.
So now that Allah has brought us into Muslim homes and Allah has given us Islam and Iman, so what we have to do? We have to take the most advantage of this situation which Allah has brought and make our deen mukammal and make our Iman complete.
और ये कामयाबी बगैर दीन के नहीं है.
And the success is never without deen.
और दीन के बगैर कोई आदमी कभी कामयाब नहीं होता.
And nobody ever succeeds without deen.
ना हुआ है, ना पहले कभी हुआ है, ना अब कभी है, ना आइंदा कभी होगा.
It never happened that a person succeeded without deen, nor does it happen now, nor will it ever happen in future as well.
और ये एक धोखा है जो इंसानों को लगता है कि बगैर दीन के भी आदमी कामयाब होता है.
And this is an illusion and a big deception that a person thinks that we can't succeed without deen in our life.
बल्कि बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि जितना दीन नहीं है उतनी ज्यादा कामयाबी है.
But some people are such misunderstanding that they think less the deen in their life, more successful they are.
हम तो फिर भी किसी दर्जे में मुसलमान है, जो बिल्कुल ही बेईमान है वो हमसे भी ज्यादा कामयाब है.
And we see that we are Muslim at least of some sort, but there are some who are absolutely without deen. Our eyes see that they look more successful.
वो हमसे ज्यादा comfortable life में है.
They are more comfortable in life than us.
उनकी गाड़ियां देखो, उनके मकानात देखो, उनकी इज्जत देखो, उनकी दौलत देखो, उनकी शोहरत देखो.
Their cars are bigger, their houses are bigger, they seem to have more coverage, people respect them more, they were more famous.
तो ये धोखा हमेशा लगा है.
This deception is always there.
लोग ये समझते हैं कि दुनिया में अगर कोई मजे में वक्त निकाल दिया तो वो कामयाब हुई.
People think that if somebody lived a life, happy life and successful, not successful, the life of comfort, that is more successful.
और अल्लाह पाक ने इस धोखे से निकालने के लिए कुरान पाक को भर दिया है.
And Allah subhanahu wa ta'ala filled the Quran with the stories to take us out of this deception.
Aur janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne khol kar mauke se iski wazahat farmayi hai ki ye jo nazar aati hai yahan kamyabi wo insani zindagi ke aitbar se koi waqt hi nahi rakhti, uska koi time hi nahi hai.
And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has opened many more details that what meets our eyes is not success, and that as versus the success that is there, really this is nothing.
इसलिए कि ये जो दुनियावी जिंदगी की कामयाबी है, ये जो हमारा टाइम है दुनियावी जिंदगी का, हमारी जिंदगी की न इब्तिदा है न इंतहा है, ये दरमियान का एक छोटा सा वक्फा है.
बिकॉज दिस सो कॉल्ड सक्सेस इन दिस दुनिया इज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, इट इज जस्ट अ स्मॉल ट्रांजिट, स्मॉल लिटिल पीरियड इन द टोटल स्पैन.
सिर्फ हम कब्र में जितना टाइम गुजारने वाले हैं इससे ज्यादा है जितना हम माँ के पेट में जो रहते हैं उसको जो तनासब है दुनिया के टाइम से. वहां 9 महीने रहते हैं या 90 साल तक 90 ईयर्स रहते हैं, वहां छोटी सी जगह में रहते हैं या बड़ी जगह में रहते हैं. तो खबर माँ के पेट की जो लाइफ का टाइम है वो टाइम को इस टाइम से जो मुनासिबत है इससे हजारों लाखों गुना कम मुनासिबत है इस पीरियड को सिर्फ खबर की जिंदगी से.
सो वी हैव स्टेड इन द वूम्स ऑफ आवर मदर्स एंड देन वी आर इन दिस वर्ल्ड एंड देन वी हैव द लाइफ ऑफ द खबर. And Shaykh just tried to give us a little glimpse into the comparison that What is the comparison of 90 years of the person's life in the dunya to 9 months in the womb of the mother? And the comparison of the life in this world as compared to this untold life in the hereafter is such or less than that as 90 years versus 9 months.
ये दुनिया का हिस्सा बहुत थोड़ा है हमारा अगरचे हमारी समझ में ये नहीं आता मगर अल्लाह जिसने जिंदगी बनाई है उसने हमें बताया.
The life of this world is so very short, although we don't seem to understand, but the Allah who made this is saying so.
Allah ने फरमाया कुरान पाक में कि वइन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फ सनतिन मिम्मा तअउदून. Allah के पास एक दिन तुम्हारी शुमार के हजार साल के बराबर होता है.
Allah says in the Quran that one day of your life is equal to 1,000 years in Allah's calendar.
एक दिन का.
From what you count.
तो एक दिन के अंदर से 1,000 साल होते हैं एक दिन के यहाँ हजार साल होते हैं वहाँ एक दिन होता है. अगर किसी आदमी को 100 साल का टाइम दे दिया गया तो उसको एक दिन का 1/10 दिया गया.
So one day of the qiyamah equal to 1,000 years.
Qiyamah, आखिरत.
One day of the akhirat, I'm sorry, is equal to 1,000 years of this life. So if somebody, for argument's sake, had 100 years life, he only has 1/10 of that one day. That's what he got.
So, और एक दिन का 1/10 कितना टाइम है? एक दिन का दसवां हिस्सा कितना टाइम है?
So what is 1/10 of one day?
बहुत थोड़ा है. इसी वजह से इद यकूलु अम्सलुहुम तरीकतन इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा. वहां ये लोग कहेंगे कि भाई तुम दुनिया में कितना रहे, तो कोई कहेगा हम सुबह में रहे, कोई कहेगा हम शाम में रहे. जो बड़ी बड़ी उम्र पाकर गए हजार साल वो कहेंगे कि तुम एक दिन रहे वहां पे.
So when it will be asked as to how much we stayed back in the world where we were sent, some people will say, I think one morning or one evening. And those who had big lives, they will say one day.
जिन्होंने हजार साल गुजारी होगी उनको लगेगा कि हम एक दिन रह के आए.
And those who happen to live 1,000 years in this world, they will say that we live like one day there.
इसीलिए अल्लाह पाक ने इस दुनिया में जो हमें टाइम दिया है मेरे दोस्तों वो इम्तिहान के लिए.
So the time Allah has given us in this world is for checking us out, testing us.
और ये कुरान पाक में जगह जगह वाज़ह लफ्ज़ों में फरमाया गया है कि तुमको इम्तिहान के लिए रखा गया है.
And several places in the Quran, in very clear words, Allah has said that we've been sent in the world to test us.
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
That Allah has created a cycle of life and death so that Allah check us out from the amal point of view.
अब ये जो एक दिन का 1/10 है अल्लाह के हिसाब से और जो examination का timing है, हमारे यहाँ भी हमारे इंडिया पाकिस्तान वगैरह के अंदर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ स्कूलों में कॉलेजेस में यहाँ पे भी तकरीबन ऐसी होगा कि जो एग्जामिनेशन का टाइम होता है वो 2.5 घंटे से 3 घंटे का होता है.
So now we have one day.
जो कि एक दिन का दसवां हिस्सा है.
So one day we have. Now, if you look at it in this world, in here also, and he says back home in where we come from, there also, when we look at the examinations in the school, the time of the examination is about 2.5 hours to 3 hours when we take the exams. This is 1/10 of our day.
एक दिन का हमारे हिसाब से 2.5 घंटे जैसे बनता है, अल्लाह के हिसाब से ये 2.5 घंटे हैं 100 साल.
So like in this example that Sheikh gave before, the 2.5 or 3 hours exam is 1/10 of our one day. If a 100 years, somebody has 100 years of life, that's about 1/10 of that one day of the akhirah.
अब अगर एक आदमी examination हाल में enjoy करे तो वो कामयाब कहाँ से हो गया भाई?
If a person is living it up while 2.5 or 3 hours exam slot, how is he successful?
उसको भेजा गया exam के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसने देखा मैं exam तो देने से रहा, अब वो ठंडा पानी पीने के लिए उठ रहा है, कभी चाय लेने के लिए उठ रहा है, कभी बाथरूम के लिए जा रहा है, और कभी एसी का रुख अपनी तरफ कर रहा है, कभी फैन के नीचे जाके बैठ रहा है, और कभी किसी को छेड़ रहा है, गोलियां बना के मार रहा है, जैसे स्टूडेंट करते हैं ना अपने. अगर उसने वहां इंजॉय किया और लिखा कुछ भी नहीं तो वो कामयाब हो गया क्या?
सेम अ पर्सन इज इन द एग्जाम हॉल एंड ही हैज 2.5 or 3 hours एट हिज डिस्पोजल फॉर द एग्जाम एंड व्हाट ही डज ही जस्ट गोज फॉर टी or he goes for cold water, or he's turning the fan towards him, or he's trying to get the air condition, or he says like the kids do, he makes paper balls and plays. If 2.5, 3 hours that he had for the exam, he does not write the exam.
जो बच्चे हमारे
पास, how can he be successful?
जो बच्चे हमारे पास फेल होने वाले होते हैं वो जवाब नहीं लिखते.
So those kids who fail, he says, he knows the examination. Those who fail, he says, we know their answer sheets have no answers in it.
बल्कि वो कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख के गोलियां बना के एक दूसरे के सर पे मारते रहते हैं.
But they write just anything there and they just make paper balls and throw.
और कभी उस्ताद कोई उल्टा पुल्टा लिख देते हैं.
And they write just garbage to the teacher too.
तो उस मौके पर जिस आदमी ने मजा कर लिया और पेपर नहीं लिखा वो कामयाब कैसे हो गया.
So the person who in that slot, he just wasted his time and he thought he enjoyed, and he did not do the exam. How can he be called successful?
और जिसको एग्जाम हकीकतन देना होता है, फिकर होती है, आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में उसको इसकी कोई फिक्र नहीं होती कि वो कहाँ बैठा है, उसको हवा आ रही कि नहीं आ रही, उसको पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा, वो तो पसीने में शराबूर हो रहा होता है, वो एक एक मिनट अपना जाया नहीं करना चाहता, वो तमाम 100 नंबर लाना चाहता है, तो वो पूरा टाइम जितना है एक एक मिनट कीमती बनाते उसको अपनी कामयाबी के लिए यूज करता है, ये बंदा कामयाब होता है.
एंड हु इज अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, हु इज अ सीरियस स्टूडेंट, हु कम्स टू द एग्जाम हॉल एंड इज फोकस्ड कम्प्लीटली इन पासिंग द एग्जाम, गेटिंग 100% ऑफ द स्कोर. He doesn't care about the fan, no fan, or any other thing. He doesn't know. In fact, the stress of wanting to succeed make him sweat. But he, this is the one who makes it. He just want to succeed. This is a serious student.
इसी वजह से इस दुनिया में जो आदमी हकीकत के एतवार से कामयाबी हासिल करता है, उसको इस दुनिया से enjoy करने का time नहीं रहता.
So similarly, in this world, a person who truly is after true success, he has no time to enjoy the goodies of the world.
इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और मस्जिद नबवी बनाने लगे तो आपने यही शेर पढ़ा था, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा फगफिर लिल अंसार वल मुहाजिरा. या अल्लाह, मजे की लाइफ तो आखिरत की है, बस माफ कर दीजिए आप, माफ होते ही काम कामयाबी का हो जाएगा.
So that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came to Medina and he was building the masjid. He was saying this in a poetry form. There Allah subhanahu wa ta'ala, the real enjoyment is the enjoyment of the akhirah. And Allah, please forgive the ansar and muhajira. And if you forgive, then it's nothing but success onwards.
Imtihan ye hai ki yahan par enjoyment ki cheeze rakhi gayi hai, magar jisko akhirat ki taiyari karni hai wo apne kaam mein rahega.
So the real test is this, that there are things that attract and that dissuade us. But the one who wants to prepare for the akhirah, he will not be bothered by this. He remains focused on how to succeed.
और नाकाम वो होता है जो इस दुनिया ही की राहत और आराम को सब कुछ समझकर उसके लिए अपने आप को बिजी कर देता है.
And the real failure is that person who considers only this thing as something to go after, and he becomes busy in this, and in the process destroys his.
और जितनी ज्यादा दुनिया अपने साथ लपेटता है उतना बड़ा नाकाम होता है.
And more the worldly possession come in his life, that much more of the failure that person is.
उसको समझाने के लिए जगह जगह कुरान पाक में वाकयात बयान किए गए हैं.
To explain that deception in many places in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has opened, told the stories.
फिरौन का किस्सा बयान किया गया.
The story of Firaun Allah opened.
इतनी जगहों पर अल्लाह ने कुरान पाक में फिरौन का किस्सा सुनाया है.
So many places Allah described the story of Firaun.
जाहिर है कि किस्सा सोने के लिए तो नहीं सुनाया गया कि आपको बहलाना है, इसलिए किस्सा स्टोरी सुना दी गई है.
Obviously it's not just telling stories for the storytelling, that is just enjoyment going on.
نَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کے سبق کے لیے ہم نے فرعون اور موسیٰ کا قصہ تمہارے سامنے بیان کیا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ says the Quran, the meaning of which is, Allah says that he opened the story of Musa and Firaun for you, the men of Iman.
क्योंकि ईमान वाले ही फायदा उठा सकते हैं इससे.
So they are the only ones who can benefit from it.
वही उस धोखे से निकल सकते हैं जिस धोखे में फिरौन था.
They are the ones who can come out of deception in which Firaun was dwelling.
उसके जहन में ये बात थी कि दीन हो या ना हो दुनिया होनी चाहिए.
Firaun used to think that deen or not, he should have the possession, the dunya of the world.
उसने हुकूमत बना ली.
He made government.
वो बादशाह बन गया.
He became a king.
उसने खजाने जमा किए.
He amassed the treasures.
उसने एग्रीकल्चर का सिस्टम बनाया पूरा.
And he had in a modern agricultural system.
ताकि कभी भी खिजा ना आए उसके इलाके में.
So that there is never shortage.
हमेशा पानी की कसरत रहे और फरावानी रहे बागों बहारों की.
So always there is prosperity of the agricultural side.
अब उसके पास में हुकूमत भी हो गई, दौलत भी हो गई, फौज भी हो गई, माल भी हो गया और बहलात भी हो गई और नहरें भी हो गई.
So now he has the government, he has kingdom, he has wealth, he has position, he has palaces, and he has everything now.
मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको समझाया तो उसने अपने कौम को जमा करके एक तकरीर की.
When Musa alayhi salam tried to invite him, then he collected all his people and he gave a bayan.
Usme Quran Pak mein uska bayan mazkur hai pura ki usne bayan kya diya.
And Allah revealed in the Quran the detail of the Firaun's bayan.
Firaun kehta hai alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, ye misr ki badshahat meri nahi hai aur ye nehrein aur agriculture ka jo system hai wo mere mahallat ke niche se nahi behta hai, tumhe nazar nahi aa raha.
So in the bayan Firaun said, don't you see I have the whole country by myself and don't the rivers flow under my palace and I have control over everything, don't you see that I have everything under my control?
Agar main kamyab nahi hu to fir kaun kamyab
hai? If I am not successful then who is?
Amara khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakad yubin, main zyada behtar hu ya ye jo mujhe bula raha hai islam ki taraf, ye zaleel mahin zaleel ko kehte hain aur bayan tak nahi kar sakta, iski zuban mein luknat hai.
Allah. He said, am I successful or this lowly person, Musa alayhi salam, this lowly person who is calling you, is he successful? He said, I am successful or this lowly person is successful.
Lawla ulqi alayhi aswiratun min dhahab, ye to itna mamooli aadmi hai ki iske paas to sone ke kangan bhi nahi hai. Itna bhi sona nahi hai ki dono haathon mein daal le ek chudi.
He said, this man cannot even give bayan, he cannot talk because Musa alayhi salam was short on that. And he said, this fellow does not have even gold to put in his hands. He is not even an ordinary person who would have whatever, the gold bangles.
Because badshahon ke paas pehle aswira hua karte, kangan hote the, sone ke wo pehna karte the.
Because the sign of being royal and kingly was to wear golden bangles in the hand.
Aur taj pehne sone ka.
And the crown of gold.
Bade bade haar dale sone ke.
And the blinks.
Aur us zamane ka kam az kam 1 lakh dirham ka kapda pehne.
And in those days, 100,000 dirham then currency worth one dress.
तो उस पर ये कह रहा था कि इसके पास बड़ा ड्रेस कहां से लाएंगे, ताज कहां से लाएंगे, हार कहां से लाएंगे, इसके तो हाथ में सोने के कंगन तक नहीं है, ये फकीर है.
सो फिरौन यूज्ड टू से द वेरी वेयर इज ही गोना गेट दिस गोल्डन क्राउन फ्रॉम, वेयर इज ही गोना गेट दिस बैंगल्स फ्रॉम, वेयर इज गोना गेट दिस कॉस्टली ड्रेस फ्रॉम, ही इज अ मियर पुअर पर्सन.
ये कहां कामयाब है, मैं कामयाब हूं.
हाउ इज ही सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल.
पूरी तफसीर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बयान फरमाई जगह जगह उसकी, ये बताने के लिए कि जिस धोखे में वो था कि वो बगैर दीन के कामयाब है, उस धोखे में मुसलमान न हो.
सो अल्लाह सुभानहू तआला ओपन द फुल डिटेल्स ऑफ द डिसेप्शन इन विच फिरौन वॉज ड्वेलिंग फॉर अस द मैन ऑफ ईमान टू सेव अस फ्रॉम फॉलिंग इन टू दैट डिसेप्शन दैट ही थॉट दैट ही वॉज सक्सेसफुल. And though he is not, so we should not fall into that. That's why Allah opened the details.
Allah farmata hai ki jab wo usme magan ho gaya,
Allah says that when he got caught into that,
aur us par qanaat kar liya ki main kamyab ho gaya,
and he thought that there is nothing more to gain and this is the height of success,
to humne ek plan banaya.
So Allah says then we made a plan,
usko bhi dikhana tha ki hum bhi kya hain.
Allah wanted to show him now what Allah is.
Musa alaihi salam bani israel ko leke nikal gaye.
Musa alayhi salam left with his followers, Bani Israel.
Firaun ne apni kabina jama ki.
Firaun gathered his inner circle cabinet.
Aur phir uske baad mashwara kiya ki kya kare, ye to sare gaye.
And then he started
to mat pure nikal gaye.
He made mashwara, what are we going to do because they all left en masse.
तो सबने ये मशवरा किया कि इन हाउलाई रशीर जिमतुन कलीलून, ये छोटी सी जमात है, उनके पास हथियार अमुनिशन भी नहीं है. व इन्नहुम लना लगाइजून व इन्ना लजमीउन हाजिरून, और हम तो बड़ा ग्रुप है और हम सब के सब इकट्ठा हैं और हम सब के सब असलाह से लैस हैं, इनकी तो चटनी बना लेंगे थोड़ी देर में.
सो इन द मशवरा दे द फिरौन्स इनर कैबिनेट सेड दैट दिस इज अ स्मॉल वेरी स्मॉल स्प्लिंटर ग्रुप दैट हैव गॉन and they have no weapons and nothing to defend and they have nothing, no resources, and we have all the control and we are huge crowd and we have a big coalition, within no time we are going to smash them to the smithereens.
Aur wo jo chota group jisko unhone kaha wo bhi 6 lakh se zyada ka tha.
And that Muslim little group that they say was kya tha,
6 lakh se zyada tha,
600,000.
To ab iske paas fauj kitni thi hogi andaaza karo aap.
So imagine if that 600,000 he calls a small group, how much army Firaun has.
To usne kaha ke chalo inka peecha karte hain.
So they say let's go chase them.
Ye apni jagah ye plan kar raha tha ke inko jao aur abhi inko maar do.
So this was the Firaun's plan, that go now and finish them,
aur taaki agli martaba koi awaz hi na utha sake.
So never in future anybody raised their voice against Firaun.
Allah tbarak wa taala farma rahe hain ye uska plan nahi tha, ye hamara plan tha.
Allah says that was not his plan. This was Allah's plan.
أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك. हमने निकाला उनको बागों से, हमने निकाला उनको महल्लात से, हमने निकाला उनको खजानों से, हमने निकाला उनको चश्मों से, हमने निकाला उनको इज्जत की कुर्सियों से, सबसे कहा कि इधर आ जाओ, तुम्हारा काम है. तो पता नहीं चलता बंदे को कि कब अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ में क्या गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक भी मकर फरमाते हैं. अल्लाह तबारक व तआला का मकर यानी उनकी तदबीर जो होती है वो सब पर गालिब होती है. अल्लाह ने बताया कि मैं बताता हूं कि जिस जिंदगी को तू आयश समझता है उसकी हकीकत क्या है. सबसे निकाला फाग रखना हूं मजमईन और सबको पानी में डुबो दिया.
सो अल्लाह सुब्हानहु व तआला सेज दैट दिस वाज नॉट फिरौन एंड कंपनी प्लानिंग, दिस इज अल्लाह प्लानिंग. अल्लाह सेज वी टुक हिम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, वी टुक देम आउट ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी एंड देयर कंट्रोल एंड देयर मिलिट्री एंड देयर माइट एंड ऑल दिस वट एवर अल्लाह हैड गिवन. अल्लाह सेज वी टुक हिम आउट फ्रॉम देयर एंड टोल्ड देम टू कम आउट देयर वेयर वी आर गोइंग टू शो देम अल्लाह'स माइट. एंड अल्लाह सेज that Allah brought them. This is Allah's planning. When Allah's planning kicks in, Allah subhanahu wa ta'ala's planning, Allah said, just come out. And what happened at the end? All of them, Allah drowned them.
अब यहाँ बहुत से लोग हत्ता के मुसलमान भी ये समझते हैं कि यहाँ आके फिरौन की कहानी फिनिश होगी.
At this point in the juncture in the story, many of us, including some of us Muslims, also think that when Firaun drowned, the story is finished.
नहीं नहीं, फिरौन जब डूबा है तो डूबने के बाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसको डूबा के पकड़ा गया है, जब से उसकी पकड़ शुरू हुई है.
सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द फिरौन स्टोरी व्हेन ही ड्राउन,
बल्कि बिगिन हुई अब वो.
दिस बिगिंस नाउ व्हेन ही ड्राउन, ही हैज बीन कॉट इनटू अल्लाह'स ग्रेट प्लानिंग एंड नाउ द स्टोरी जस्ट बिगिन.
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद अजाब शुरू कर दिया.
Allah says in the Quran that Allah got hold of Firaun, and as soon as Allah got hold of him, Allah started the azab, punishment.
Quran Pak mein Allah ne farmaya ki annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya, har din do martaba subah aur sham aag ka azab unko diya jata hai.
Allah says in the Quran that the punishments detail that the fire morning and evening, the azab of the intense fire as punishment on Firaun. गुदुबो वासर मॉर्निंग एंड इवनिंग,
जब से पानी में डूबा है आज तक ऐसे ही है.
फ्रॉम द मोमेंट अल्लाह ड्राउन्ड हिम इन दैट वाटर टिल नाउ,
और कयामत तक ऐसे ही होगा.
इट विल कंटिन्यू अप टू द डे ऑफ जजमेंट.
ये वाकया उसके मरने के बाद से कयामत से पहले का है जो बयान कर रहे हैं अल्लाह पाक.
दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी दैट अल्लाह रिवील्ड इज फ्रॉम दैट पॉइंट इज मच बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशनिंग.
और जब कयामत,
अब तो कयामत
वयोम तकुम उत्साह, उसके बाद है कुरान पाक में वयोम तकुम उत्साह अदखिलो आल फिरौन अशद अल अज़ाब. और जब कियामत कायम होगी तो हम कहेंगे कि दाखिल कर दो इनको उससे ज्यादा सख्त अज़ाब में जिसमें ये अब तक थे.
एंड अल्लाह रिवील इन द कुरान द मोमेंट द डे ऑफ जजमेंट इज सेट, अल्लाह विल ऑर्डर दैट फ्रॉम नाउ द मोर इंटेंस पनिशमेंट एंटर देम इनटू द फायर ऑफ जहन्नम.
क्योंकि बरज़ख में तो सुबह और शाम दो मरतबा था, और जहन्नम में तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक मुस्तकिल आग में ही डाल दिया जाए.
सो इन द बरज़ख देयर वाज ओनली ट्वाइस इन 24 आवर्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, बट द पनिशमेंट दैट इंटेंस पनिशमेंट दैट विल स्टार्ट विल बी फॉर एवर ऑल द टाइम नॉन स्टॉप.
और कहां कामयाब हुआ मेरे भाई?
So where is the success of Firaun?
हुकूमत रखे भी फेल हुआ.
He failed in his government.
दौलत रखे भी फेल हुआ.
In his wealth.
खजाने रखे भी फेल हुआ.
In his treasures.
सारी इज्जत की वजारत की कुर्सियां रखे भी फेल हुआ.
In all the whole setup of what would be looking respectful.
सारे महलात रखे भी फेल हुआ.
In all his palaces.
सारे नहरों का सिस्टम रखे भी फेल हुआ.
In all his the gardens under which the river flow.
और रोजाना दो मरतबा का मतलब यह है कि उसको मरे हुए 2500 साल हो गए अब तक.
There are 2500 years that he has been gone.
Abhi tak.
Twice a day.
So, ab tak kitni martaba usko saza ho gayi?
So, until now, how many times he has been punished?
Maine ek saathi se pucha to unhone kaha 5000.
I asked one of the fellows, he said 5000 times.
Arre bhai 5000 kaisa ho jayega? Ek din mein do martaba, 2500 saal ho gaye. Ek saal ke 360 din hote hain.
Okay. I was going to say 5,000 too. He said, I asked somebody that 2,500 years, twice a day he's been punished. How many times? He said 5,000. He said, what? In one day twice? That's 360 days in a year. It is 2500 years. How can it be 5000?
इतने दिन तो अब तक हो गए उसको सजा के.
This many days are punishment till now.
अब compare करो दुनिया की उस life से जिसमें उसने मजा किया और अब तक के time को जिसमें वो सजा में है और कुरान के बयान के मुताबिक है.
And now compare it, that little time that he thought he was enjoying, and all this time of punishment, this is what Quran spells out the details for.
और कयामत कब आएगी अल्लाह ही को मालूम है.
We are not know when the qiyamah will come.
कयामत तक ये सजा तय है उसकी.
And until qiyamah, this is the detail of the punishment.
और कयामत के बाद फिर उसको हमेशा इससे ज्यादा सख्त अजाब में दाखिल करने की इत्तला है.
And after the qiyamah is much severe, intense punishment from that point on.
और no return है, वापसी नहीं है बिल्कुल.
And there is no return.
सख्त तरीन नकाम
है. This is severe.
यानी सोचा नहीं जा सकता, तसव्वुर नहीं किया जा सकता, ऐसे सख्त नाकामी का शिकार हुआ.
We cannot imagine what kind of failure he has experienced.
धोखा उसको हो गया था.
So he was deceived.
जैसे आज के इंसान को धोखा हो गया कि अगर मेरी जिंदगी के अंदर दौलत आ गई और मेरी जिंदगी के अंदर अच्छे मकानात बन गए सबर्ब में, बड़ी जमीन लेके मैंने बना लिया और जनाब इस्टेब्लिश हो गया मेरा बिजनेस और मेरे बच्चों की शादियां हो दी अपनी खुशी की जगह पर हो गई और लग्जरी लाइफ मुझे मिल गई, अच्छी अच्छी गाड़ियां मुझे मिल गई और कोई खाने पीने की प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, मैं कामयाब हूं. भाई कहां से कामयाब हो गया? कुरान को तो पढ़ो, हदीस को तो पढ़ो, अल्लाह के इल्म पे तो ट्रस्ट करो. अल्लाह पाक ये फरमाने कि ये कोई कामयाबी नहीं होती, ये धोखा है कामयाबी.
लाइक वी आर इन डिसेप्शन दिस डेज, वी थिंक इफ वी गेट व्हाट वी वांट इन द वर्ल्ड, इन द properties, in the homes, in the cars, even the food, and our children are married, and we feel we have nothing else to gain, and we think we are successful. He said, who calls this a success? He said, please read Quran, read the Hadith, and read what Allah says. How can this be success? If this is not deception, what is deception?
Iman naam hai apne mushahide ka inkaar karke Allah ke ilm par bharosa karne ka.
Iman is the name of negating what our knowledge is, our experience is, our understanding, our eyes see, and trust what Allah says.
Allah ke ilm par bharosa kiya jayega, wo ilm sahi hai.
On the knowledge of Allah to trust that which is right ilm.
Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ke ilm par bharosa kiya jayega, wo ilm sahi hai, wo Allah ka unko diya hua hai.
And we will trust on the knowledge that Allah sent with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and trust that to be true, and trust it fully. That is iman.
और हमने अपनी गलतफहमी का शिकार अपनी औलाद को भी बना दिया.
And because of our ignorance, our children are suffering because of our misunderstanding.
हमने अपने रास्ते लिए अपने लिए ये रास्ता चुना तो अपनी औलाद के लिए भी इसी को चुना कि किसी तरह उनकी जिंदगी दुनिया की बन जाए.
लाइक वी आर डिसीव्ड इन दिस फॉल्स सक्सेस मॉडल, वी ऑल्सो पिक द सेम वे फॉर अवर चिल्ड्रन, thinking that that's their success life too.
अब वो उन्होंने पढ़ लिया, डिग्रियां ले ली, उसके बाद कमाने लग गए, उनकी शादियां हो गई, ना नमाज के, ना रोजे के, ना जकात के, ना हज के, ना आखिरत की फिक्र के, ना दीन की मेहनत की, हम समझ रहे हैं कामयाब हो गए. और कुरान ने क्या कहा?
Now we see that our children, we give them a good education, we give them a good life, they went on to their higher college degrees, and they got the jobs and they married, but there is no salat in their life, there is no other parts of the deen in their life. Now what did we gain? See what Quran says about what they got.
Quran kehta hai kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala zalika huwa alkhusran almubin. Aap ye elan farma dijiye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke nuksan uthane wale asli wo hain jinhone apna nuksan aur apni biwi bachon ka nuksan qiyamah ke din kiya. Yahan ke bare mein nahi kaha gaya. Kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala zalika huwa alkhusran almubin. सुन लो कि ये बहुत बड़ा नुकसान है. लहुम मिन फौकहिम ज़ुलल मिन النار व मिन तहतहिम ज़ुलल ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فتقون. उनके ऊपर भी आग होगी, तुम्हारी औलादों के ऊपर भी आग, उनके औलादों के नीचे भी आग होगी. ये वो बात है कि अल्लाह डराता है अपने बंदों को, ऐ मेरे बंदो डर जाओ.
सो माय फेलो ब्रदर्स, दैट फॉल्स मॉडल इन व्हिच वी सकर्ड आवर फैमिली एंड आवर चिल्ड्रन, अल्लाह सुभान व तआला इन द कुरान रिवील. Then Allah says that those who on the day of judgment will be called out as having failed themselves and failed their families. Allah revealed the meaning of which is on the day of Qiyamah, Allah says of fire on top of them and fire underneath them, and because of their failed model. This is the families that we push them towards the false model. And on the day of Qiyamah, Allah says this is what will happen. Allah says in the Quran, Allah is Allah is instilling fear about not making that mistake, about not losing our families to this failed model.
انہیں اندازہ فرمائیے اللہ کی شفقت کا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بندوں یہ ایسی سچویشن ہے کہ جو میں نے بنائی ہوئی ڈیزائن کی ہوئی ہے آٹومیٹکلی جاؤ گے اس لیے میں ڈرا رہا ہوں تم ڈر جاؤ تمہاری وجہ سے چینج نہیں کروں گا اس کو
دس از اللہ لو ٹوورڈز اس دیٹ اللہ از وارننگ اس اباؤٹ ناٹ میکنگ دیٹ مسٹیک بیکاز اللہ ہیز سیٹ اپ ا سسٹم آفٹر دیٹ مسٹیک واٹ ول ہیپن از واٹ اللہ نوز سو اللہ از وارننگ اس ناؤ Not to make that mistake.
خوف اللہ بھی عبادہ اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو یا عبادی فتقون اے میرے بندو ڈر جاؤ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ lovingly is scaring us from making that mistake out of love. Allah says, oh my servants, fear now about failing.
اللہ پاک نے قارون کا قصہ کیوں سنایا
Why did Allah tell us the story of قارون
Same وہی thinking ہے جو ہماری تھی
It's the same thinking that we have.
دولت مل جائے تو پھر سب چیز ہے
That if we get lots of wealth, then we got it.
اور اس کے پاس اتنی دولت ہو گئی اتنی دولت ہو گئی اتنی دولت ہو گئی کہ اس کے دولت کے جہاں پہ گودام تھے ان گوداموں کو جو تالے لگے ہوئے تھے ان تالوں کی جو چابیاں تھیں ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے نو آدمی چاہیے تھے
سو ہاؤ مچ ویلتھ قارون امیسڈ دا منیز دیٹ ہی ہیڈ ان دوز ویئر ہاؤسز دی لاکس آن دوز ویئر ہاؤسز دا کیز آف دوز لاکس There were jamaat, big jamaat of 9 people in charge of carrying the keys to those warehouses of the wealth of the Qarun.
Agar ye Quran mein na hota to hame bahut mubalagha lagta.
If this was not already in the Quran, we would have thought that this is exaggeration.
Hum yaqeen nahi karte aur samajhte ki ye to aisi baat hai.
We would have found hard to believe if it was not in the Quran.
Lekin ye to Quran mein hai.
But this is Quran.
Quran mein koi galat baat nahi hai.
There is nothing wrong in any in part of the Quran.
Isme koi mubalagha nahi hai.
There is no exaggeration in Quran.
Iske andar koi jhoot nahi hai.
There is no lies in the Quran.
Is baat mein jo isme jo likha hua hai usme koi shak nahi hai. Zalikal kitab la raiba fihi.
There is no room for any second thoughts or doubt. Quran
kehta hai inna mafatihahu latanu bil usbati lil quwwa. ان مفاتحہ مفاتح مفتاح کی جمع چابیاں ان مفاتحہ لتنوع تنوع کے معنی بھاری ہو جانا آسان نہیں تھا اٹھانا بالعصبت اولی القوا تندرست ایک جماعت پر بھاری تھی چابیاں اس کے لیے اٹھانا
سو دی ڈسکرپشن آف واٹ قرآن سیز از دیٹ دی کیز ٹو دی ویئر ہاؤسز آف قارون ویئر سو مینی دیٹ آن ا ہیلدی جماعت آف 9 پیپل اٹ واز ہارڈ آن دیم ٹو کیری دی کیز
اب اندازہ فرمائیے اس کو یہ تھا کہ اگر دولت میں نے جمع کر لی تو پھر کامیاب ہو گیا میں
سو قارون تھنکنگ واز دیٹ اف آئی بیکم ویلدی اف آئی کلیکٹڈ انف ویلتھ دین آئی ایم سکسیسفل
پھر اسی سے میں مکان بھی بناؤں گا اسی سے سامان خریدوں گا عائش کروں گا کھاؤں گا پیوں گا عزت بناؤں گا ساری چیز جیسے دنیا سمجھتی ہے کہ دولت سے سب کچھ ہے اس کے ذہن میں بھی یہی بات
سو ہی تھاٹ دیٹ ود دی ویلتھ دیٹ آئی ہیو امیسڈ آئی ول گیٹ ایوری تھنگ دیٹ آئی وانٹ فار مائی لائف دی بلڈنگ دی پراپرٹیز آل دی کمفرٹس اینڈ ایوری فیسلٹی اینڈ ایوری تھنگ And I will become successful. Like that, we also think that if we get a lot of money on our hands, then we will get everything and then we will become successful.
Musa alayhi salam ne usko samjhaya.
Musa alayhi salam tried to convince him.
Itefaq se ye bhi Musa alayhi salam ke zamane ka hi hai.
And he is also of the Musa alayhi salam time.
Balki ye Musa alayhi salam ke khandan ka aadmi hai.
Also he is a family member.
تو اس کے بعد اس کو کہا وقت بھی فیما آتا کہ اللہ دار الآخرہ دیکھو جو تمہیں ملا ہے نا اس میں اللہ کی بندگی کرو اور اپنی آخرت بناؤ اس سے
سو موسیٰ علیہ السلام told him that look with what Allah has given you think of making your آخرہ
ولا تنسى نصيبك من الدنيا دنیا میں تم اس سے انجوائے کرو جو جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل یہ آخرت بنانے کے لیے
And he said that from what you have Don't forget your share, what is permissible, to enjoy from what Allah has given, but this is not the place to stay forever. Think of that.
Usne kaha, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي کہنے لگا یہ میں اپنے علم اور اپنے ہنر سے کمایا ہوں اس لیے اس میں کسی کا حق نہیں ہے میں کسی کو نہیں دوں گا اور یہ میری اپنی کامیابی کے لیے کافی
So he said that what I have is not given by anybody to me. I have it because I have the ability to get it. This is based on my own strategy and financial investments and gathering. Nobody has a right to ask anything from this.
Allah نے فرمایا کہ بیوقوف کو پتا نہیں ہے کہ ایسے کتنے میرے سامنے اس سے پہلے گئے ہیں
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دس فول ڈز ناٹ نو ہاؤ مینی سچ پیپل آئی براٹ اینڈ مووڈ آن
اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوت و اکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون ایسے مجرموں سے تو سوال بھی نہیں کروں گا ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دوں گا
So Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran There are how many such fools? I brought them in the world and they moved on. He said that these dumb people, I will not even ask any question, hurled them straight into the fire of hell.
बताया गया कि दुनिया में कामयाबी बगैर दीन के नहीं.
So what is Allah showing? That in the dunya there is no success without deen in it.
और आखिरत में भी कोई कामयाबी बगैर दीन के नहीं.
And the आखिरत success also is based on the deen.
बगैर दीन के कामयाबी का ख्याल ये धोखा है.
It is a deception to think of success without deen.
और ये मुसलमान को इस धोखे से निकलना फर्ज है.
And it is compulsory for a Muslim to come out of this cycle of deception.
इस बात को हम realize नहीं कर रहे हैं.
We are not realizing this.
अभी भी हम ये समझते हैं कि मौलाना बयान कर रहे हैं, करने दो.
Still we are thinking, let Maulana talk whatever he likes.
उनको दुनिया का नहीं पता है कुछ भी.
Because he doesn't know anything about it.
उसकी तनख्वाह बेचारे की थोड़ी मोड़ी होगी, अपनी दाल पानी बनाता होगा.
He must be making a few dollars, a little small salary, and eating dal roti.
उसको क्या पता है कि मिलियन क्या होते हैं, 10 million क्या होते हैं, billion क्या होते हैं.
What does he know what is a million and 10 million and a billion?
इस धोखे से मुसलमान नहीं निकल रहा.
From this deception the Muslims are not coming out.
और आपको इसका माइंड बनाना पड़ेगा, ये फर्ज है.
We will have to train, cultivate this understanding in our mind that it is compulsory to come out of this.
देखो, अल्लाह के इल्म को हम सच्चा मानेंगे नहीं मानेंगे, ईमान किस चीज का नाम है?
Are we going to trust Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge as the true knowledge or not? What this is iman.
Allah ke rasool ke ilm ko sachcha manenge nahi manenge?
Are we going to trust the knowledge given to us by Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam as truth and whole truth?
Aur unka ye ilm Quran aur hadith mein saaf bayan kiya gaya hai, koi do matlab nahi nikalte is baat ke.
And this knowledge in the Quran and hadith is very clear, there is no ambiguity in it.
To aisi surat mein hame apna zehen banana hoga ki ha ye haq hai.
So in this condition we will have to train our minds that yes, what they are telling is haq.
Agar hamara ye mind ban gaya ki ha deen mein hi kamyabi hai to uske baad ke kaam bahut aasan hai.
If we are determined that the success is only in bringing deen in our life, then the rest of the things are easy.
Aur ye deen aata hai mere dosto zindagiyon mein deen ki mehnat se.
And this deen comes in our life through the effort of the deen.
To deen ki mehnat karenge sari insaniyat mein deen aayega.
If we make the effort of the deen, the whole humanity will get the deen.
Hamari family mein deen aayega.
In our families the deen will come.
Hamare bachchon mein deen aayega.
In our children, boys and girls, the deen
will come. Hamare mardon aur auraton mein deen aayega.
In our men and women the deen will come.
Hamari zaat mein deen aayega.
In our own person the
deen will come. Aur deen ki mehnat ki khususiyat ye hai ki wo phailta rehta hai.
And the specialty of the effort of the deen is this, they keep on spreading.
Deen ki mehnat ki khususiyat ye hai ki jo deen bande ke paas hai, jo mehnat karne wala hai, wo safe ho jata hai.
And the specialty of the effort of the deen is this, that the person who makes the effort, he is guaranteed the deen in his life.
Aur phir wo deen mehnat karne ke sabab se badhta rehta hai.
And that safe deen in his life, as he makes the effort, it increases in his life.
Aur wo deen us mehnat karne ke sabab badhne ke sath sath phailta hai, dusron mein muntakil hota hai. Ye deen ki mehnat ke lazmi asraat hai.
And that deen in the life of the person who is making the effort, it keep on going up. And the more he does the effort, it spreads more. The noor of the deen.
Jitna zyada mehnat ki jayegi, qurbani di jayegi, utni zyada hidayat phail jayegi.
More the effort of the deen will be done, more the noor of hidayat will spread.
Aur deen ki mehnat chhut jane ka jo nuksan hai, wo iska ulta hai bilkul.
And the damage of the quitting of the effort of the deen is the reverse of this.
Sabse pehle ye hai ki jo phail raha hota hai, wo ruk jata hai, kyunki mehnat nahi ho rahi.
The very first thing is, if the effort is not there, that deen which was spreading will not spread anymore.
Dusri baat ye hai ki is aadmi ka jiske andar deendari jo kuch bhi hai wo badh nahi sakti is waste ki usko encourage karne wale asbab nahi hote, wo wahi ka wahi ho jati hai.
The second thing is, the person in whose life there was deen, it becomes stagnant, it does not increase because the effort stopped.
Aur phir hota ye hai ki aadmi ghaflat ka shikar hota rehta hai, bhool ka shikar hota hai, buri aadaton ka shikar hota hai, bure mahol ka shikar hota hai. तो जो दीन उनके पास पहले से था वो भी खत्म हो जाता है.
एंड देन देयर नॉट डूइंग द एफर्ट क्रिएट्स इनडिफरेंस, द गफलत इन द लाइफ ऑफ द पर्सन, एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग मिस्टेक एंड ही स्टार्ट्स स्लिपिंग एंड द रिजल्ट इज दैट हिज ओन दीन बिकम डिफिकल्ट इन हिज ओन लाइफ.
आज पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा का हाल हमारी आंखों के सामने है.
टुडे इन द होल वर्ल्ड द कंडीशन ऑफ द मुस्लिम उम्मा इज इन फ्रंट ऑफ आवर ओन आईज.
हम दूसरों को तो क्या जगाते, हम खुद ही सो गए.
व्हाट टू वेक द अदर पीपल, awaken them, we fell asleep.
Jabki hamari ye zimmedari hai ki najat dene wali jo cheez hai wo sirf musalman ke paas hai is waqt.
Although it's our responsibility, we know this, that the only salvation there is in the effort of the deen that Muslims know about.
Sari insaniyat ko najat dene wali jo cheez hai wo Islam hai, wo musalmanon ke paas.
The salvation of the entire humanity lies in bringing Islam in their lives, which Muslims know, Muslim have it.
Hum samajhte hain ki hum bahut chote hain, hum marhoob hote hain, aur ye samajhte hain ki hum par dusron ka ehsaan hai. Are hum ehsaan karne ke liye hain, ehsaan lene ke liye nahi hain.
We are misunderstanding. We think that we are too few or too weak or too small or too negligible. And we are feeling
impressed.
We are too much impressed by others and we are not doing the effort. We are not beggars. We are not here to take from anybody. We are those who have come to do ihsan, to do good for others, to give to the people, not take from them.
Is mulk ne hame bada fayda diya.
This country has benefited us a lot.
Isne hame thikana diya.
It has given us a place.
Yahan humne paise kamaye.
We earn our livelihood
kama rahe hain
and still doing it.
Aur apne ilakon mein bhi bechte hain, yahan par bhi mazay mein hain.
And we are at ease here also and we send money to our people also.
Yahan ki facilities se fayda uthate hain.
We are taking advantage of what is available.
Inka hum par haq hai.
They were right on us.
Aur hum inse zyada qeemti cheez apne paas rakhte hain.
And we, what we have is much more valuable than what we found here in this country from them.
Isme koi mubalagha nahi hai.
There is no exaggeration in saying this.
Isme koi khushfahmi nahi hai.
And this is not just made up.
Ye haqeeqat hai ki Islam se najat milegi.
This is the reality that the salvation is in bringing Islam.
Hazrat Maulana Ilyas Sahab rahmatullah alayh ka marfooz ye hai ki Allah Pak puri duniya mein musalmanon ko jabran distribute kar deta hai taaki har jagah ke insano ke liye deen available ho jaye.
Maulana Ilyas Sahab rahmatullah alayh say that like it or not, Allah subhanahu wa ta'ala distributed the Muslims all over the world so people find out that in Islam lies their salvation.
This
is the design that Allah subhanahu wa ta'ala has made for the whole world, the universal distribution
of Allah.
Because Allah subhanahu wa ta'ala is merciful on the entire
humanity.
And Allah wants to establish the truth on everybody, on the whole
humanity. Allah
wants to leave no excuse for
anybody.
We were dumb, we were not thinking, we came here chasing
money.
Allah has not brought us only for money here.
आप पैसे कमा लो, लेकिन जो तुम्हारे पास चीज है वो इंसानों को बांट देना.
You earn your money, but what you have for distributing to the humanity, do it.
वो अमानत है जो वही के जरिए से उम्मत मुस्लिमा को मिली है.
It's a trust from Allah which through revelation, heavenly revelation called wahi, Allah has given to the ummah.
वो अमानत है जो खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है.
This is the trust put on our shoulders by the last of the Anbiya alayhi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatam al-Nabiyyin.
Wa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, aur Allah ne hukm diya hai ki amanat ko jis tak pahunchna hai us tak pahunchane ki zimmedari tumhari
hai. Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran that it is your responsibility to discharge the trust Allah put on your shoulder to those to whom it belongs.
Intihai shafqat se, muhabbat se, tareeqe se, hikmat se is amanat ko sari insaniyat mein baantna hai.
So with a lot of love and affection and wisdom, we have to take this, what is theirs, which is on our shoulder, to them for the entire humanity. We have to distribute what is theirs.
Magar hum dastaan kisko sunayenge? Hum hi so gaye dastaan kehte kehte.
Who are we going to tell the story? We were responsible to tell the story, but we fell asleep.
So jab hum so gaye, to hamare uthane ki zimmedari, mere dosto, ab kis par hogi?
So if we went to sleep, who is going to wake us up now? Who is responsible?
Dusre aake uthayenge.
Who will come to wake us?
Gair aake uthayenge.
Others will come.
Koi nahi aayega mere bhai.
Nobody will come.
Farishte aayenge, wo bhi nahi aayenge.
Are the angels going to come? No.
Quran Pak mein Allah ne farmaya ki main farishton ko is kaam ke liye nahi bhejta.
Allah says in the Quran that I don't send angels for this work.
Walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula wa la labasna 'alayhim ma yalbisun. Agar farishton ko bhejenge to unko aadmi bana ke bhejenge aur unke sath wo taqaze lagayenge jo insano ke sath hote hain.
So Allah says in the Quran that if Allah was going to send the angels, Allah would have sent the angels in the form of human, and Allah would have associated with them those lawazima, those things which are associated with the human life.
इसलिए कि अगर फरिश्ता अपने फरिश्तापन में आके तबलीग करेगा और समझाएगा, तो सबसे पहले आप उसको पूछोगे कि आप जाप क्या करते हैं?
Because if an angel came, and as an angel, he does the effort of the tabligh and dawah, first thing you're going to ask is, what job you have?
आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं?
What do you eat?
वो कहेंगे कि हम ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना शादी करते हैं, ना बच्चे, ना जॉब करते हैं. अब आपका क्या जवाब होगा उसके बाद?
If they reply that we don't have to eat, we don't have to work, we don't have family, we don't have children, what are you going to ask now?
निकल जाते हैं, दोखों में.
He said, get out of here.
फरिश्तों के जरिए से ये काम होने वाला नहीं है.
दिस वर्क इज नॉट गोइंग टू बी डन बाय दी.
और अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त आदमियों से बात नहीं करते.
एंड अल्लाह डज नॉट टॉक डायरेक्टली टू द ह्यूमन.
किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि वो अल्लाह से बात करे.
नो ह्यूमन बीइंग इज इक्विप्ड टू टेक ऑन टॉकिंग विद अल्लाह सुब्हान.
बात करना तो बहुत दूर की बात है, पैगम्बर के भी बस में नहीं था कि देख सके.
टॉकिंग इज वे आउट ऑफ द थिंग, बट इवन द प्रॉफिट्स डिड नॉट हैव द वेयरविथल्स to withstand seeing Allah subhanahu
wa taala. Shauk mein Musa alayhi salam ki zuban se nikal gaya, Rabbi arini anzur ilay, parwardigar mujhe dikha do aap hain kaise.
Out of an intense desire, Musa alayhi salam said, oh Allah subhanahu wa taala, I love to see you once.
Qala lan tarani, farmaya Musa, ye tumhara kaam nahi hai.
Allah revealed to Musa, this you cannot handle it.
Lekin inka shauk tha to israr kiye ja rahe the, kare mujhe aap dikha do.
But Musa alayhi salam was intensely driven to want to see, so he said, please Allah, let me see.
Allah ne farmaya ki main apni thodi si tajalli pahad pe rakhunga.
So Allah subhanahu wa taala revealed that, oh Musa, a little glimpse of my light I'll throw to the mountain.
Walakin inzur ila al-jabal,
look at the mountain,
kyunki pahad sabse mazboot hota hai duniya mein,
because mountains are rock solid.
Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, agar pahad reh gaya apni jagah par to shayad tum dekh loge.
If it stands after I throw the glimpse of my light, if it stands there, then you will see me.
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعْلَهُ دَكَّا وَقَرَّ مُوسَى صَعِقًا. جیسے اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا, پہاڑ پورا ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گیا.
So when Allah subhanahu wa ta'ala threw his glimpse on the mountain, it pulverized and Musa alayhi salam became unconscious.
فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المسلمين. جب ہوش آیا کہنے کے پروردگار معافی چاہتا ہوں میں نے اپنے حیثیت سے زیادہ کی گزارش کر دی.
سو وین موسی علیہ السلام کیم بیک ٹو کانشسنس ہی آسکڈ اللہ ٹو فرگیو ہم اینڈ ہی سیڈ دیٹ آئی آسکڈ فار مور دین آئی کڈ ہینڈل.
تو کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا, کوئی بات نہیں کر سکتا.
سو نو بڑی کین ٹاک ٹو اللہ, نو بڑی کین سی اللہ سبحانہ.
اور اللہ پاک زبردستی کسی کو ہدایت دینا نہیں چاہتے.
اینڈ اللہ نیور وانٹ ٹو ریم ڈاؤن دی گائیڈنس ڈاؤن اینی بڈیز تھروٹ.
کیونکہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے ہدایت کو قبول کرے. امتحان اسی چیز کا ہے.
اللہ وانٹس دیٹ اے پرسن ان ہز انسائڈ ہیز انکلینیشن ٹو وانٹ دی گائیڈنس. دس از واٹ دی ٹرائل از.
زبردستی ہدایت دے دیں گے تو سسٹم پورا ختم ہو جائے گا.
اف اللہ فورسز دی گائیڈنس آن ایوری بڈی دین دی ہول سسٹم ول بی ان ڈس ریپیئر.
انہوں نے فرشتوں کو زبردستی ہدایت دی ہوئی.
Allah has given the guidance to the angels by Allah's order forcibly.
Chand aur suraj ko zabardasti hidayat mili hui hai.
The moon and sun are following Allah's instruction.
Aasman aur zameen ko zabardasti hidayat mili hui hai.
The heavens and earth are guided by Allah like it or not.
Hawaon aur badalon ko zabardasti hidayat mili hui hai.
The winds and the clouds have been given the guidance by Allah.
Insaan ke alawa jinnat ke alawa sari makhlooq ko zabardasti hidayat mili hui hai.
The guidance to all the creation of Allah except the human beings and the jinn is, they like it or not, Allah has forced guidance on them.
Isliye unke sath sawab aur azab nahi hai.
So there is no reward and punishment with them.
Itne karodon saal se bichara suraj apne kaam mein laga hua hai, uska koi sawab muqarrar hai kya?
The poor sun is following Allah's hukam for billions of years. Is there anything Allah is giving to the sun?
Na uske liye jahannam hai na uske liye jannat hai.
No jahannam for the sun, no paradise for the sun.
Isliye usme ye qabiliyat nahi hai ki Allah ki ne'maton ko dekh sake.
It does not have wherewithal to appreciate the good of Allah's blessing.
Aur na usme ye qabiliyat hai ki Allah pak ki musibaton ke khazanon ka mushahida kar sake.
Nor can it see the storage of punishment of Allah subhanahu wa
taala. Allah pak to apni sifaton ko dikhana chahta hai.
Allah want to show his attributes.
Apni shaan dikhana chahta hai.
Show his awe.
Apni qudrat dikhana chahte hain.
Show his power.
Apne khazane dikhana chahte hain.
Show his treasure.
Apni ni'matein dikhana chahte hain.
Show his blessings.
Wo to insaan ke saath hai ki usko imtihan leke dena tay kiya gaya hai.
This is with the human being that Allah want to show all this after checking him out.
Is wajah se na Allah tbarak wa taala ki taraf se zabardasti hogi, na farishte aayenge, koi nabi nahi aayega. اور کوئی غیر مسلم آ کے ہمیں نہیں سمجھائے گا. اب ہمیں مسلمانوں اپنے آپ کو ویک اپ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ویک اپ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ تو کرنا پڑے گا.
So now Allah will not force the hidayah down anybody's throat. The angels will not come. The
prophet sabse aakhir Huzur Paak sallallahu alaihi wasallam aapre nabi hai, prophet nahi aayenge.
Right. And the angels will not come and the force will not be there and the prophet will not come. So we are asleep. And so, and the who will, the others are not going to come and tell us, and we are asleep. So how are we going to awaken us now?
इसीलिए मेरे दोस्तों अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर और दावत की मेहनत मुसलमानों पर मुसलमानों के अंदर फर्ज है पहले उसके साथ साथ पूरी दुनिया पर फर्ज है.
This is why my respected brothers, the effort of दावत, the अमर बिल मारूफ and नहीं अनिल मुनकर is incumbent on those who say they are Muslims, first into the Muslims first. Before taking it to the others.
जब मुसलमान सोते हैं तो फिर मुसलमानों के ही जिम्मे होता है उन सोने वाले मुसलमानों में मेहनत करना.
When the Muslims are asleep, it is the responsibility on the shoulders of the Muslims only to awaken them that they do effort in them.
हजरत मूसा अलैहि सलाम के बाद से लेके हजरत ईसा अलैहि सलाम तक हजारों पैगंबर आए, सैकड़ों पैगंबर आए, वो पूरे पैगंबर मुसलमानों में आए.
From the time of Musa alayhi salam up to Isa alayhi salam, hundreds or you say thousands of the prophet came, Allah knows, they all came among the believers only.
इसलिए कि मूसा अलैहि सलाम के मानने वाले थे वो सारे.
Because they were believers of Musa, they were the Muslims.
जमाने में जो मूसा को मानने वाला होता था वो मुसलमान होता था.
They were the Muslims of their time.
हर जमाने के सच्चे मजहब का नाम इस्लाम होता है.
The name of the real way of life, the following the real thing is called Islam.
इसलिए ईसा अलैहि सलाम के जमाने के मुसलमानों ईमान लाने वालों का नाम मुसलमान था.
Those who believe in ईसा अलैहि सलाम in his time, they are Muslims of that.
इब्राहिम अलैहि सलाम के जमाने में उनके मानने वालों का नाम मुसलमान था.
Those who believe in इब्राहिम अलैहि सलाम in his time, they are Muslims of that.
ईसा अलैहि सलाम के बाद से ईसा अलैहि सलाम तक जो पैगंबर आए वो किन में आए.
So those prophets whom Allah sent between the Musa alayhi salam time and Isa alayhi salam time, where did they come?
वो मुसलमानों में आए.
They came in the Muslims.
क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने तौरात पर अमल छोड़ दिया था उस जमाने के.
Because the Muslims had quit following the Torah, which is the book of Musa alayhi salam.
वो गफलत का शिकार हो गए थे.
They fell indifferent.
वो अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाले बन गए थे.
They were transgressing the limits of Allah.
उन्होंने दुनिया को तरजीह दे दी थी, आखिरत को भूल गए थे.
They fell for the dunya versus their akhirah.
इसलिए दीन की मेहनत दीन के वजूद में आने का जरिया है.
So the deen, for the deen to come back in the existence, it has to be the effort of the deen in the Muslims of the time.
इसलिए जिस आदमी पर अल्लाह फजल फरमा देते हैं उसको दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाते हैं.
So the one on whom Allah subhanahu wa ta'ala graces, Allah make him available and accept him to do the effort of the deen.
कितनी मेहरबानी है कि हम लोगों को अल्लाह ने दीन की मेहनत के साथ मंसूब फरमा दिया.
So this is the great gift of Allah that Allah joined you and me and us in this effort of the deen.
Islam ki daulat se bhi nawaza aur deen ki mehnat ke sath bhi mansoob kiya.
Allah gave us the Islam, the wealth of Islam, and Allah associated us with the effort of the deen.
Jisse Islam kamil hoga, jisse iman kamil hoga,
which will make completion of Islam in our life, which will make our iman complete.
Jisse ye imani aur islami zindagi pure insano mein jo ghaflat ka shikar hai unke andar zinda hogi.
The effort with which the whole masses of Muslims and the humanity, which is indifferent and asleep,
फिर वो एक दिन जरिया बनेगी दूसरों में हिदायत के आम होने की.
Islam will come in their life and they'll become a means for Islam to come into the other's life.
इसलिए दीन की मेहनत के साथ में जिसको अल्लाह ने तौफीक दी चुन लिया उस पर अल्लाह का बड़ा फजल हुआ मेरे दोस्त.
So the one whom Allah selected to do the effort of the deen, Allah's special mercy has come on him.
इसलिए दीन की मेहनत के लिए जो कुर्बानी चाहिए उस पर मुझे और आपको तैयार होना है.
So you and I have to get ready to stand up on that sacrifice which is required to bring the effort of the deen.
इसलिए कि मुजाहिदा चाहता है.
Because it requires some sacrifice.
इसमें जज्बात को कुचलना पड़ता है.
We have to crush our egos.
आदमी को सफर करना पड़ता है.
We have to suffer in the process.
अपने आराम को तजदे के बेआरामी में जाना पड़ता है.
We have to let go our comfort zone.
अपनी हैसियत को गिरा के ऐसे लोगों में जाना पड़ता है जो आपको नहीं पहचानते.
We have to crush our ego and go lower ourselves and go to those people who don't know our level.
क्या हमारी हैसियत है मेरे दोस्तों? हम जाने से शर्माते हैं. हम डॉक्टर साहब हैं, हम इंजीनियर साहब हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमको कोई जानता नहीं. जाते हैं तो लोग बेइज्जती करते हैं, हमारी हैसियत खराब होती है. अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे गश्त में और लोगों से मुलाकात करते थे तो क्या उनका उनको रिस्पॉन्स मिलता था? ऑनर मिलता था? लोग आंखों पे बिठाते थे? क्या कुछ नहीं होता था? अल्लाह के दीन की मेहनत ऐसी चीज है कि अपनी हैसियत को गिराना पड़ता है.
सो वी शुड नॉट थिंक दैट वी आर वेरी सक्सेसफुल and a businessman or a doctor or something, a labor holder, and it is beneath us to go to the people, and if we go, people will not treat us respectably and disgrace us and insult us. He said, what are we thinking? What do you think Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam went through? When he went into the gush, he used the word gush, when he went to visit the people and to invite them to Allah, what do you think he met with? Did people respect him? Did people carry him? Did people treat him nicely? They insulted him. And what treatment he got? So who are we, my friend?
So, Huzur ne farmaya ke jitna mujhe daraya gaya, utna kisi ko nahi daraya gaya. Aur jitna mujhe sataya gaya, utna kisi ko nahi sataya gaya.
And Rasulullah Sahib is reported to have said that the kind of treatment, the fear that I was subjected to, nobody has been subjected to that kind of fear. And how much I have been harassed, nobody has been harassed.
Aur Allah Pak bhi Huzur Pak Sahib ke martabe ko Allah hi jante hai, Allah hi ne banaya hai.
And Allah subhanahu wa ta'ala knows the station and the maqam and the status of Rasulullah. Allah made him, so Allah knows that.
Iske bawajood Allah Pak isko gawara farma rahe the ki in logon mein hidayat aayegi kaise varna.
Despite all this, Allah subhanahu wa ta'ala put up, tolerated the mistreatment of Rasulullah sallam, because how otherwise will people come to get the hidayat? Because the world is a place of means.
Allah Pak sabab se hi karenge.
Allah will do it through the means.
So deen to deen ke sabab se hi aayega.
So deen will come through the effort of the deen.
Jaise aulaad shaadi ke sabab se aayegi.
Like the children come through the avenue of marriage.
Isliye Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ki in mehnaton aur qurbaniyon aur takleefon ko Allah Pak dekh rahe the aur gawara farma rahe the aur kuch bhi nahi bol rahe the.
That's why Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, what he went through, his efforts and his sacrifice and all his harassment and all the difficulties, Allah subhanahu wa ta'ala is seeing this. But Allah is not changing the scene.
Aur tasalli de rahe the sarkare do alam ta'ala.
And Allah subhanahu wa ta'ala is supporting him.
Tasalli de rahe kya bol
rahe. Allah is consoling him.
Aur Huzur Pak Aslam ko basharatein di ja rahi thi.
And Allah is giving him good news and glad tidings.
Aur pichle paigambaron ke halaat sunaye jaate the ki dekho unke sath aisa aisa hua tha, aap jhel lo.
And Allah is opening the stories of the previous prophets about what they went through. Please tolerate this.
Phir Allah hi ne bataya ki mere nabi ka maqam kya hai.
Then Allah only showed what is the position of my Nabi.
Jab aapke manne wale taiyar ho gaye,
when those who followed him and those who follow him, they stood up,
aur unko samajhne wale taiyar ho gaye sarkar ke maqam ko,
and those who really understood what his position was,
tab Allah ne bataya ki mere Nabi ke shaan kya hai.
Then Allah opened up what is the real position of my Nabi.
Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ke bare mein farmaya gaya ki koi aadmi aapke hujre pe jaake aapko aawaz nahi de sakta ki mujhe aapse baat karna hai.
Then position of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam revealed in the Quran that nobody can go close to his room and raise his voice to talk to him or call on him.
Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun. Ye be'aqal hai jo jaake Nabi ke ghar pe aawaz dete hain, Muhammad aaiye mujhe aapse milna hai.
Allah revealed the position that those who go to his, where he is and outside his door, give him, call on him, they have no sense, they do not know his position, they are bi-aql.
Phir aapko milna hai to kya karna.
So what should be done to me?
Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum. Agar aapko milna hai to aap sabr kijiye yahan tak ke az khud sarkar bahar aaye tab aapko milne ki ijazat hai.
So Allah revealed that Allah is saying this now, that it's good for you to wait until he himself comes out for you to meet him.
فرمایا کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. اگر کسی کو میرے نبی سے ملاقات کرنا ہے تو اس کو پہلے صدقہ کرنا پڑے گا, اس کے بعد وہ ایبل ہوگا کہ میرے نبی کو دیکھے اور ملاقات کر سکے.
So now the position of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم is describing that if you want to go talk to him, first do sadaqa before you go ever to try to talk to him.
فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا, اس لیے میں نے معاف کر دیا.
Then Allah said that giving sadaqa every time you want to go talk to him will become difficult. So Allah said, I forgive you from wanting
to do this.
This is one such hukum on which nobody had to follow, act on it.
Yeh ajeeb baat hai ki amal nahi karwaya fir hukum diya kyun.
This is amazing that there is no amal on it. Why did Allah give that order?
مقام بتانے کے لیے حکم دیا تھا کہ اصلی مقام تو یہ ہے کہ ان سے ملاقات کے لیے جب تک فیس ادا نہ کرو, جب تک صدقہ نہ دو تم قابل نہیں بنتے, مگر امت پر مشقت ہو جائے گی, اس لیے اللہ نے پہلے سے اس کو معاف کر دیا کہ جاؤ معاف کر دیا, مگر بتا دیا کہ تمہارا ملنا بھی ان سے کتنی بڑی بات ہے.
So to establish the high position of Rasulullah, Allah gave the hukum that you must do some sadaqah. You have to pay some fees before you ever go approach him to talk. He said, this one who come, he was never acted on. So what did Allah say? To establish the great position of Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam.
If you go talk to him, never ever raise your voice over the voice of Nabi sallallahu
alaihi wasallam.
When it comes to that point, you should never come forward disrespectfully in front of Allah and Allah. And then Allah subhanahu wa ta'ala established beyond the limits.
فرمادیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی زیادہ حق رکھتا ہے ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ. ہر نبی پر اس کی جان سے زیادہ اس کے اوپر نبی کا حق ہے. اولا بمانا حق ہے یہاں پر.
Allah subhanahu wa ta'ala reveals now the ultimate. Then anybody who has iman, the Nabi has more right on that person than that person himself.
اب اندازہ فرمائی گئی ہے یہ مقام سرکار کا اللہ ہی نے بتایا ہے.
So now you imagine, this is the position Allah stated for His Nabi.
مگر یہ کب بتایا جب ماننے والے تیار ہو گئے کہ میرے نبی ہیں کیا.
When did Allah show this? When through His effort, a lot of His followers stood up. Then Allah said, this is who position of my Nabi is.
یہ مقام آپ کا اب بنا ہے ایسا نہیں پہلے سے ہے یہ.
This is not a position just became, it's there before also.
وہ پہلے سے نبیوں کے سردار ہیں.
He is the chief of all the prophets.
وہ پہلے سے امام الانبیاء ہیں.
He is the imam of the anbiya from before.
وہ پہلے سے ایسے ہیں کہ سارے نبیوں کو ان پر ایمان لانا ضروری ہے.
He is such from before that all the prophets had to have iman on him.
مگر جب انسانیت پر رحم کرنے کا مسئلہ آیا تو جو تکلیفیں آپ کو آ رہی تھی اللہ پاک بھی حلم فرما رہے تھے اور سرکار کو فرمایا کہ آپ بھی صبر کرو.
But when it came to the effort for the guidance of the humanity, Allah subhanahu wa ta'ala softened up and put up with the difficulty of the Nabi because it is the matter of the guidance of the humanity.
اسلیے میرے دوستو محنت دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے.
So my dear brothers, for the deen to come into the humanity, effort of the deen is a means.
اور دین کی محنت کو اللہ نے فرض کیا.
And Allah has made it mandatory.
اور اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے.
And many, so many virtues Allah has distributed.
اتنا انعام رکھا کہ حد فرما دی.
Allah subhanahu wa ta'ala has promised tremendous blessing on it.
کہ آدمی اگر چلتا ہے تو چلنے پر ثواب الگ ہے.
There is a special reward for walking on this effort.
اس کا گھوڑا چلتا ہے تو اس کے گھوڑے کے قدموں کا ثواب الگ ہے.
If he rides horse for the effort, just the horse's feet.
اس کا گھوڑا اگر گھاس کھاتا ہے تو گھاس کے ہر تنکے پر ثواب ہے.
On that horse, if it eats grass, on every blade of the grass that the horse eats, there is a reward.
اس کا گھوڑا اگر لیڈ کرتا ہے تو اس کے لیڈ پر ثواب ہے.
And the droppings of the horse, while on the effort on the horseback is being done, on the droppings of the horse there is a reward.
پہلے زمانے میں گھوڑا تھا, اس زمانے میں گاڑی ہے.
It was horses before, now we have the car.
جو کام گھوڑا کرتا تھا وہی کام گاڑی کرتی ہے.
The car delivers the same kind of thing that the horse is used to.
وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ گھاس کھاتا تھا, یہ ٹرین پٹرول پیتی ہے.
It used to eat grass, now it consumes the...
قدم اس کے بھی تھے, پہیے اس کے بھی ہیں.
It was on the feet, now it's on the wheels.
اگر آدمی بغیر گھوڑے کے پیدل جائے تو اس کی الگ فضیلت ہے.
The person who did not have a horse and was going walking, separate reward.
پیدل قدموں کے غبار اڑنے پر یہ فرمایا کہ اگر پیٹ میں چلا گیا تو پیٹ پر جہنم آرام.
And the dust that comes on the person while he is on the path, on the effort, the dust that goes in his stomach, Hazrat said that on that stomach Allah makes the fire of جہنم حرام.
اگر یہ غبار اس کی ناک میں چلا گیا تو ناک اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے.
If the dust in that path goes in the nostrils of the person, the fire, the smoke of the fire of جہنم and this dust in the nostrils cannot be together.
اور ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جس آدمی کو اللہ کے راستے میں سر میں درد ہو جائے تو اس سر میں درد ہونے کی وجہ سے جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے.
And one حدیث, the meaning of which the Shaykh mentioned, it is said that a person who goes in the path of Allah and he just gets the headache, on that headache Allah makes the jahannam haram on him.
Chot lag jaye, bukhar aa jaye, to us par alag sawab hai.
Any injuries a person sustains or even the temperature he develops, Allah makes jahannam haram.
Logon ki taraf se koi beizzati aur takleef ki baat pesh aa jaye to us par alag sawab hai.
If people put him through any difficulty or insult him, then special reward on that.
Jahan tak ye pahuncha wahan tak sawab hai.
As far as he reaches, there is sawab up to that.
اور اگر اس آدمی کی بات سے ہدایت مل گئی اس آدمی کو تو اس کی پوری ہدایت اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جاتی ہے.
If the effort of this person resulted into the guidance for that person, That guidance package is put in this person's account.
उस हिदायत की रोशनी में जितने आमाल खैर उससे वजूद में आएंगे इसके अकाउंट में भी होंगे.
All the good things, the good amal that person who now got the guidance will do, the reward of all those amal without taking any way from there will come in this person.
ये फजीलतें क्यों होती हैं?
Why this reward?
ये अल्लाह को पसंद क्यों है इतना?
Why Allah likes this so much?
जब चीज अल्लाह को पसंद होती है उस पर इनाम रखते हैं.
Allah gives the reward and gives surprises of what Allah likes.
अल्लाह को कितना पसंद होगा कि इतनी छोटी छोटी चीज पर इतना बड़ा बड़ा इनाम रखा है?
How much Allah must like there are these little things. Then Allah gives so much reward.
क्योंकि वो जानते हैं कि इस मेहनत का हिदायत से कितना गहरा जोड़ है.
So Allah knows that through this effort, how much the hidayat is tied to this effort.
इसलिए जब ये उम्मत मेहनत नहीं करती तो गुनाह भी उतना ही ज्यादा है.
So when this ummah does not do this effort, the burden of the disobedience and sinning is also so great.
बकाल उतना ज्यादा है.
That much difficulty.
बकाल उतनी ज्यादा है.
That much Allah's पनिशमेंट इज देयर.
सजाएं उतनी ज्यादा अल्लाह पाक ने रखी हुई
है. That much punishment is waiting us.
यहां तक रिवायतों में है कि सब चीजों की सजा आखिरत में ही मिले में ही मिल सकती है, लेकिन दीन की मेहनत छोड़ने की सजा आखिरत में भी मिलेगी और दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा.
Then the narrations mention this so much that for quitting the effort there is lot of punishment that Allah has in the akhirah, but this is such that आखिरत पनिशमेंट कैन वेट बट इन द वर्ल्ड ऑल्सो वी विल सफर.
मगर मेरे दोस्त यहाँ एक बात और समझने की है.
बट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल
यू, ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होते हैं तो फिर उसको दीन की मेहनत की तौफीक से महरूम करने लगते हैं.
व्हेन अल्लाह इज नॉट हैप्पी विद समबडी, अल्लाह सुबहान व तआला टेक अवे द इंक्लिनेशन एंड तौफीक.
इतना बड़ा काम मैंने उसको दिया, ये इसकी नाकदरी कर रहा है तो महरूमी का सिलसिला शुरू होता है.
अल्लाह सेज आई गेव हिम सच अ ह्यूज एफर्ट एंड ही इज नॉट डूइंग इट, ही स्टैंड्स डिप्राइव्ड.
जब उसके माल को फिर कबूल नहीं किया जाता जब उसका माल गंदा होता है.
देन अल्लाह डज नॉट एक्सेप्ट हिज मनी व्हेन इट इज स्पॉइल्ड.
उसके वक्त को कबूल नहीं किया जाता जब उसके गुनाह बढ़ जाते हैं.
व्हेन हिज डिसओबीडियंस एंड सिनिंग इंक्रीजेस अल्लाह डज नॉट एक्सेप्ट हिज टाइम.
जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक में कमी और सुस्ती आ जाती है तो उसको महरूम कर दिया जाता है.
व्हेन द कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हान व तआला वीक, then Allah subhanahu wa ta'ala deprives him.
Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Maine unka maal isliye nahi liya ki unka imaan Allah rasool ke saath mein kharab hai. Aur ye farmaya Allah pak ne ke namazon mein ye susti karte hain, aur farmaya ke jab kharch karne ki nubat aati hai to khushi se nahi kharch karte. Jab ye khushi se nahi kharch karte, jab ye namazon mein susti karte hain, jab inke imaan mein kharabi hai, main maal kyun loon inka mere raaste mein? Ye Allah pak farma rahe hain Quran par.
So Allah says in the Quran, the ayat that is just recited, Allah says that when they become weak and their imaan goes down, Allah subhanahu wa ta'ala does not accept their wealth. Allah does not accept their time. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, this weakness, this connection with Allah, that when it results into a person, if make salat, he make half-heartedly. And if they are told to spend in the path of Allah, they do not. Allah says, why should I accept their wealth that they want to spend? Because their connection with me has weakened.
इसलिए मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह ने हमें दावत की मेहनत के साथ मंसूब फरमाया है तो हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं मेरी किसी गड़बड़ की वजह से मेरे से तौफीक मुझे तौफीक छीनी तो नहीं जा रही. अल्लाह पाक, हम तो एक्सक्यूज लेकर खुश हो जाते हैं, उसको गोल फिरा दिया, उसको गोल फिरा दिया. असल देखने की बात यह है कि कहीं उधर से तो मामला नहीं हो रहा कि ये ना जाए.
सो माय ब्रदर्स, नाउ दैट अल्लाह हैज गिवन अस गुड लक टू बी एसोसिएटेड विद द एफर्ट ऑफ दिस दीन, वी नीड टू गार्ड अवर सेल्व्स that we should not make any mistake by which Allah subhanahu wa ta'ala will reject us and create a situation by which the good that we do is not accepted by Allah.
Isliye khoob istighfar karna padta hai, maafi mangni padti hai, taufeeq mangna padta hai Allah se.
So we must ask Allah forgiveness, do istighfar a lot. We need to keep asking Allah to forgive us. We need to keep asking Allah to continue giving us tawfiq.
Allah tbarak wa taala se mang mang ke is raste mein nikalna padta hai.
So we have to beg Allah subhanahu wa taala to accept us, so Allah keep us continue going in the effort in the path of Allah.
Allah se hum ye kahenge ki ya Allah, main bahut gunahgar ho gaya hu, isliye mujhe tawfiq de dijiye, kyunki is raste mein jane ki sabse pehli basharat gunahon ki maafi hai.
So we have to beg Allah subhanahu wa taala, we have to keep asking, oh Allah subhanahu wa taala, I have become a sinner and disobedient, so please give me tawfiq and accept me to go in your path Because the basharat, the good news is this, the very first thing Allah does when we go out in the path of Allah is the forgiveness of the sins.
Aadmi sochta hai ki main gunahgar hu, main kya karun? Are bhai, tu gunahgar hai to tu zyada kar, kyunki gunahon ki maghfirat ka to is amal ki wajah se vaada hai.
So the person thinks that I am such a sinner, what can I do? He says, because you are a sinner, therefore hasten, do it, because Allah subhanahu wa ta'ala forgives. This is how you get the forgiveness.
Adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin aleem yaghfir lakum dhunubakum. Sabse pehle maghfirat hi ka vaada kiya gaya hai.
Allah subhanahu wa ta'ala is saying that should I tell you of a bargain which will result into the forgiveness. Yaghfir lakum dhunubakum, the very first thing through the effort that Allah is promising.
Is wajah se mere dosto Allah se maang ke hame nikalna hai.
That's why we have to beg Allah subhanahu wa ta'ala to accept us.
Aur nikalte rehna hai.
And keep going out.
Bahut se saathi kehte hain yaar kab tak nikalna hai.
Many of our friends say, how long we have to keep doing khuruj?
Mere dosto, ye kiska raasta hai?
My friends, whose path is this?
Allah ka raasta hai.
It's Allah's way.
To agar aap Chicago ja rahe ho to Chicago ke raaste pe aap jayenge to kab tak jana aap?
So if you want to go to Chicago, how long you have to keep going to Chicago?
Jab tak Chicago na aa jaye jab tak jana hai.
Until you reach Chicago you got to keep going.
कैलिफोर्निया जा रहे हैं आप तो कैलिफोर्निया के रास्ते पे जब आप चलेंगे तो कैलिफोर्निया के रास्ते पे कब तक चलेंगे आप?
You want to go to California and you set out to go to California on the right path. How long you will keep going?
जब तक कैलिफोर्निया ने आ जाए जब तक जाना है.
Until you reach California you got to keep going.
आप गए यहाँ पे दो तीन रेस्ट एरिया तक चले गए, कहने का मैं कैलिफोर्निया तक जाके आ गया हूँ. जब पहुंच जाओगे,
if you travel on the right path and you go to 2-3 rest areas and you stop and you come back, you say, I went to the path to California, I went to California and came back. Did you make it?
Main 70 mein gaya tha 40 din pe, main 75 mein gaya tha 4 mahine pe, aa gaya tha California.
Yeah, I went for 40 days in 1970, I went for 4 months 40 days in 1975. Did you reach California?
Bhai, Allah ka rasta hai, jab tak jana hai jab tak Allah na mile.
Allah.
This is Allah's way, my respected brother. We got to keep going until we find Allah.
Allah Pak ki vilayat mil jaye.
Until we become friends to
Allah. Allah Pak ki dosti mil jaye.
Until Allah finds us.
Allah Pak ki nisbat mil jaye.
Allah gives us his connection.
Usool ila Allah ho jaye.
Our reaching to Allah.
Aadmi ala inna awliya Allah mein dakhil ho jaye.
Until Allah enters us into his friend circle.
Ibadur Rahman mein Allah Pak dakhil farma de.
Until we become true servants of Allah.
Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ki basharat wo sun le.
Until we get the good tidings of entering into the fadkhuli.
इसलिए मेरे दोस्तों कंटिन्यू मेहनत करते
रहना है. कंटिन्यूस
और ये सबसे अजीम मेहनत है.
एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ
और बड़ा फायदा है इसमें.
एंड देयर इज अ ग्रेट बेनिफिट.
इसमें वक्त का जिया नहीं है.
देयर इज नो वेस्टिंग ऑफ टाइम हियर.
इसमें पैसों का जिया नहीं है.
इट्स नॉट वेस्टिंग ऑफ मनी.
इसमें एनर्जी का जिया नहीं है.
इट इज नॉट लॉस ऑफ एनर्जी.
इसमें हमारे बीवी बच्चों का नुकसान नहीं है.
देयर इज नो डैमेज टू आवर फैमिली.
इसमें हमारे बिजनेस का नुकसान नहीं है.
देयर इज नो लॉस ऑफ आवर बिजनेस.
इसमें दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी है.
This one is the success.
इसलिए मेरे दोस्तों हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना है.
That's why my dear friend, we have to go in the path of Allah.
निकलेंगे सब इंशाअल्लाह.
एवरीबॉडी गो
सारी दुनिया में फिरने के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह पाक हम सबको कबूल फरमाए और सारे साथी इरादे करो और नाम लिखाओ अल्लाह पाक जजाए.
अल्लाह एक्सेप्ट ऑल ऑफ अस माशाल्लाह. एंड एवरीबॉडी कीप सीटेड माशाल्लाह. Give your name, those brothers are giving name, allow them to stand and give their name. May Allah accept. Everybody is sitting with patience, alhamdulillah, and think about what we heard. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept us. But jazakumullah khair, mashallah. Keep seated, mashallah. Don't move. May 26, 40 days, Dr. Sahib. Bhai, Iqbal Sahib. Ye bhai, ek se zyada saathi likhe hain, mehrbani.